आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मनुष्य सापेक्ष चिंतन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी साहित्य की अन्यतम विभूति हैं। एक गंभीर चिंतक, बर्मी रचनाकार, सतर्क शोधक, कृति आचार्य एवं सहृदय समीक्षक के रूप में वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने समूचे भारतीय साहित्य का गंभीर अध्ययन किया था। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य एवं समस्त भारतीय शास्त्रों का पूरी निष्ठा के साथ अध्ययन करके उन्होंने उनमें अंतर्निहित लक्ष्यगत एकता को लक्षित किया था। यह सब उन्होंने आधुनिक दृष्टि से किया था। संस्कृत साहित्य के प्रकांड पांडित्य के बावजूद उनका अध्ययन और चिंतन मनुष्य केंद्रित था। आधुनिक वैज्ञानिक एवं पदार्थवादी चिंतन को भी वे इसी दृष्टि से देखते थे। उनके समूचे चिंतन प्रधान एवं रचनात्मक साहित्य के मूल में मनुष्य है। वे सारे शास्त्र चिंतन का साध्य मानव कल्याण ही मानते थे। यही कारण है कि वे चाहे साहित्य के मर्म पर विचार कर रहे हों, चाहे मानव धर्म पर, चाहे भारत की सांस्कृतिक समस्या के विषय में सोच रहे हों, चाहे मौलिकता के प्रश्न पर, चाहे सहज भाषा की व्याख्या कर रहे हों, चाहे साहित्य के इतिहास की, चाहे विकासवाद समझा रहे हों, चाहे मार्क्सवाद, घूम फिर कर मानव मुक्ति की समस्या पर आ जाते हैं। मनुष्यता, मनुष्यता की श्रेष्ठता, मनुष्य की एकता और अंततः मनुष्य की मुक्ति पर उनका अखंड विश्वास है। आचार्य द्विवेदी ने यूं तो समस्त भारतीय दर्शन का अध्ययन किया था, किंतु आगम साहित्य विशेषतः शाक्तागम पर उनकी विशेष श्रद्धा थी। वे कहते हैं, मेरे मन में आगम शास्त्रों के प्रति बड़ी श्रद्धा है और इन शास्त्रों ने जो मनुष्य को बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन दर्शन दिया है उसके प्रति अपार निष्ठा है। शाक्तागम के अनुसार शक्ति चिद्रूपा है और स्वतंत्र है। यह शिव वस्तुतः शक्ति का ही प्रसार और संकोच है। यह विश्व वस्तुतः शक्ति का ही प्रसार और संकोच है। कि प्रसार और संकोच शब्द आधुनिक विज्ञान के वाइब्रेशन के बहुत निकट है। उपनिषदों में इसी प्रसार और संकोच की प्रक्रिया को एजन कहा गया है। आचार्य द्विवेदी के अनुसार आधुनिक भौतिक शास्त्री आइजन या संकोच प्रसारशील कंपन का संधान तो पा गए हैं, पर उसकी चिद्रूपता स्वीकार करने में हिचकते हैं। शाक्तागमों के साक्ष्य पर द्विवेदी जी स्वीकार करते हैं कि जो कुछ है और जो कुछ भासित हो रहा है वह सब संविद रूपता भगवती का ही रूप है। जो है उसी का भान होता है और जिसका भान है वह सत्ता ही है। सो चिति ही सत्ता है और सत्ता ही चिति। इस प्रकार यह सृष्टि शक्ति रूपा होने के कारण सत्य है। संविद रूपा महाशक्ति चित्त स्वरूप परम शिव से अभिन्न है। यह विश्व प्रपंच परम शिव की एक से अनेक होने की इच्छा का ही परिणाम है। द्विवेदी जी के अनुसार यही इच्छा प्रथम स्पंद है। ज्ञान से इच्छा हुई और इच्छा ने क्रिया का रूप धारण किया। इस प्रकार ज्ञान इच्छा क्रिया का क्रम शुरू हो गया। वस्तुतः सारा जगत ज्ञान इच्छा क्रिया रूप में त्रिपुटीकृत है। शाक्त आगमों में इस त्रिपुटीकरण की विधायिका शक्ति को ही त्रिपुरा कहा गया है। ब्रह्म की यह एक शक्ति है। शैव आगमों में पर ब्रह्म को ही परम शिव कहा गया है। यहाँ हमारा लक्ष्य शक्तागम के सिद्धांतों का परिचय विवेचन नहीं है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आचार्य द्विवेदी व्यक्त जगत के मूल में चित्त तत्व की सत्ता स्वीकार करने वाले भारतीय परंपरा के भावी चिंतक है। शक्तागम के सिद्धांतों के प्रति उनकी निष्ठा के कई कारण हैं। पहली बात तो यह कि यह सिद्धांत जगत की सत्यता या नित्यता का प्रतिपादन करता है और इसे परम शिव की अनादेक्षा का विलास मानता है। इस प्रकार अपने मूल रूप में जीवन के प्रति राग उत्पन्न करने के कारण आशावादी है। दूसरी बात यह है कि यह आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं के बहुत निकट है। तीसरी बात यह है कि अंततः यह मनुष्य को सारे भेद प्रभेद के ऊपर उठाकर सभी प्रकार की संकीर्णता से मुक्त करता है। और अंतिम बात यह है कि इसने समूचे मध्यकालीन भारतीय चिंतन को प्रभावित किया है। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में वस्तुतः भारतीय साहित्य इस साधना से पूर्णतः प्रभावित है। चाहे वह निर्गुण मार्गी भक्तों का साहित्य हो, चाहे सगुण मार्गी भक्तों का, उसके मूल में आगमों के तत्ववाद का प्रभाव है। भारतीय धर्म साधना या शिल्प साधना के रहस्यों को समझने के लिए तंत्र साहित्य के मूल की जानकारी आवश्यक है। इतने महत्वपूर्ण शास्त्र की उपेक्षा एक भयंकर प्रमाद है। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है। आचार्य द्विवेदी ने अध्ययन चाहे जिस किसी दर्शन का किया हो, मनन उनका अपना है। सभी दर्शनों को उन्होंने अपनी विशिष्ट बौद्धिक दृष्टि से देखा, परखा और समझा है। शक्ति तंत्र से वे इसलिए प्रभावित हैं कि वह चिन्मय आनंद तत्व का अन्वेषक है, किंतु यह चिन्मय तत्व मनुष्य निरपेक्ष नहीं है। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में, हमारे दो रूप हैं, एक चिन्मय रूप, दूसरा मृणमय रूप। चिन्मय चैतन्य है, मृणमय का अर्थ मिट्टी का, अर्थात जड़। जड़ता नीचे की ओर खींचती है, चैतन्य जड़ता के गुरुत्वाकर्षण को नहीं मानता। छोटा सा त्रिणांकुर धरती के सारे गुरुत्वाकर्षण का अभिभूत करके सिर उठाकर ऊपर खड़ा हो जाता है। नैतिकता चेतना का धर्म है, अनैतिकता उसका अभाव है। आचार्य द्विवेदी ने इस तत्व को अनेक बार अनेक अवसरों पर प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार इस सारे विश्व प्रपंच में सविद्रूपता भगवती के व्याप्त होने की व्याख्या भी वे अपने ढंग से करते हैं। इससे वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह सारा जगत प्रपंच अंततोगत्वा एक है और भेद दृष्टि अज्ञान का सूचक है। मनुष्य समाज में व्याप्त स्तर भेद भी जड़ बुद्धि की देन है। आचार्य द्विवेदी ने अपनी रचनात्मक कृतियों में भी इस तत्व को बार बार स्पष्ट करने की चेष्टा की है। बाण भट्ट की आत्मकथा में भट्टनी कहती है, एक जाति दूसरी को म्लेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है, इससे बढ़कर अशांति का कारण और क्या हो सकता है भट्ट। तुम ही ऐसे हो जो नरलोक से लेकर किन्नर लोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय, एक ही करुणायातीत चित्त को हृदयंगम करा सकते। पुरुष और नारी के बीच सहज रूप से व्याप्त गहन एवं निर्मल राग तत्व में भी वे भगवती महामाया के वास्तविक चिन्मय रूप की अभिव्यक्ति देखते हैं। मेघदूत एक पुरानी कहानी में यक्ष मेघ को समझाते हुए कहता है, सौम्य तुम नहीं जानते कि तुम एक ही साथ कितनी आशाओं और आकांक्षाओं को उस विरहणी के चित्त में उत्पन्न करोगे। यह तो तुम जानते ही हो कि स्त्रियों के लिए अपने प्रिय का कुशल संवाद और प्रिय संदेश मिलने से थोड़ा ही कम होता है, मिलन से थोड़ा ही कम होता है, लेकिन केवल उसमें स्थूल मृणमय संयोग की कमी आ जाती है, नहीं तो अंतःकरण का चिन्मय मिलन ज्यों का त्यों प्राप्त होता है। इस चिन्मय मिलन का महात्मा मैं जानता हूँ। केवल स्थूल दृष्टि वाले बचकाने विचार के भौड़े रसी की चिन्मय मिलन का रहस्य नहीं समझ पाते। वही महामाया के वास्तविक चिन्मय रूप की अभिव्यक्ति है। स्थूल मिलन तो उसी को पाकर धन्य होता है। शक्ति दर्शन के परात्पर पुरुष और मनुष्य का संबंध स्पष्ट करते हुए सहज साधना में आचार्य द्विवेदी कहते हैं, केवल मनुष्य को इच्छा क्रिया और ज्ञान की त्रिधारा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त है। इसलिए परात्पर पुरुष को भी जब कुछ करना होता है तब उसे नरदेह धारण करनी पड़ती है। देह तो वह और भी धारण कर ले सकता है, पर नरदेह में उसका पूर्ण विस्तार होता है। स्पष्ट है कि आचार्य द्विवेदी दर्शन के तत्व को मानव सापेक्ष मान बनाकर ही स्वीकार करते हैं। मनुष्य ही नहीं, प्रकृति की गति और चेष्टा में भी वे शिव शक्ति की विलास लीला के दर्शन करते हैं। वे कहते हैं, बसंत का मादक काल उस रहस्यमय दिन की स्मृति लेकर आता है जब महाकाल के अदृश्य इंगित पर सूर्य और धरती एक ही महापिंड के दुरूप उसी प्रकार वियुक्त हुए थे जिस प्रकार किसी दिन शिव और शक्ति अलग हो गए थे। तब से यह लीला चल रही है। उसी व्याकुल वेदना ने धरित्री को इतना चक्कर दिलवाया है, उसके अंतरतम को उन्मथित व्याकुल करके यह इतना सुंदर उत्पन्न किया है। यह हरित शाद्वलता वनराज, यह तरंग मोहिनी वारिधारा, यह फूल और पल्लवों का अपूर्व वैचित्र सब उसी व्याकुल वेदना से संभव हुए हैं। साफ है कि आचार्य द्विवेदी के इस चिंतन में जड़ चेतन का भेद मिट गया है। दर्शन का सत्य मानव एवं प्रकृति दोनों का सत्य बनकर चरितार्थ हुआ है। आचार्य द्विवेदी ने विकासवाद और मार्क्सवाद की चर्चा भी की है, किंतु इन भौतिकवादी दर्शनों की सार्थकता भी वे मनुष्य के संदर्भ में ही सिद्ध करते हैं। विकासवाद के सिद्धांत के संबंध में वे कहते हैं, विकासवाद का सिद्धांत आजकल प्राय सर्वस्वीकृत सिद्धांत है। इस सृष्टि प्रक्रिया को इस दृष्टि से देखने वाले को यह बात अत्यंत स्पष्ट हो जाएगी कि मनुष्य के रूप में ही सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी विकसित हुआ है। मनुष्य देह में ही मन और बुद्धि का भाव, वेग और तर्क युक्ति के आश्रय इंद्रिय विशेष का विकास हुआ है। यह संसार क्या है और कैसा है, इसके जानने का एकमात्र साधन मनुष्य की बुद्धि है। हम जो कुछ समझ सकते हैं, जो कुछ समझ रहे हैं, मनुष्य का समझा हुआ सत्य है, मनुष्य निरपेक्ष सत्य बात की बात है। द्विवेदी जी विकासवाद के वैज्ञानिक चिंतन को शक्तागमों के दार्शनिक चिंतन के साथ मिला देता है। वे जड़ से चैतन्य, चैतन्य से मन बुद्धि और मन बुद्धि से मनुष्यत्व के विकास के लिए त्रिपुर सुंदरी की रहस्य लीला के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं, त्रिपुरी सुंदरी का त्रैलोक्य मोहन रूप निश्चय ही किसी बड़े उद्देश्य के लिए है, देखकर मन मुग्ध हो जाता है। किस प्रकार छोटे से चैतन्य कण ने अपने को मानव बुद्धि के रूप में विकसित कर लिया है। जड़ से चैतन्य, चैतन्य से मन बुद्धि और मन बुद्धि से मनुष्यत्व का विकास चकित कर देने वाली घटना है। कहना न होगा कि छोटे से चैतन्य कण से मनुष्य का विकास चाहे जितनी चकित कर देने वाली घटना क्यों न हो, वैज्ञानिक इसमें किसी परोक्ष चेतन सत्ता के रहस्य लीला नहीं देखते। वे चैतन्य को द्रव्य का ही परिणाम मानते हैं। उनकी दृष्टि में चैतन्य कोई नित्य और अपरिच्छिन्न सत्ता नहीं, वह परिणामशील है और उसका विकास भी क्रमशः सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर सृष्टि विधान के अनुसार होता है। आचार्य द्विवेदी विकास सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भी नित्य चेतना सत्ता में विश्वास करते हैं। वे इधर के पदार्थ विज्ञान के नए आविष्कारों का हवाला देते हुए कहते हैं, सुना है इधर हाल में पदार्थ विज्ञान के नए आविष्कारों ने तत्वज्ञानियों की युक्ति समर्थित समझी जाने वाली कार्य कारण परंपरा पर गहरी चोट मारी है और पदार्थ विज्ञान की पूर्ति के लिए धर्म विज्ञान द्वारा अनुद्भावित किसी लोकोत्तर विश्वास की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि एक नहीं एक दिन निकट भविष्य में पदार्थ विज्ञान आध्यात्मिक चिंतन के सत्य को आत्मसात कर लेगा। आचार्य द्विवेदी के लिए धर्म विज्ञान और पदार्थ विज्ञान के सत्य में विरोध इसलिए नहीं लक्षित होता कि वे दोनों के केंद्र में मनुष्य सत्य को रखकर विचार करते हैं। जब मनुष्य ही पदार्थ की अपनी स्वाभाविक विकास प्रक्रिया की अंतिम परिणति है और वही त्रिपुर सुंदरी की हास्य लीला की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि भी है, जब अभय दृष्टियों से संसार में उसमें श्रेष्ठ कोई नहीं, तब अनावश्यक तर्कों और युक्तियों के जंजाल में भटकने से क्या लाभ। आचार्य द्विवेदी ने साहित्य के संदर्भ में मार्क्सवाद की चर्चा की है। वह यह मानते हुए भी कि मार्क्सवाद जड़ विज्ञान के तत्ववाद पर आधारित है, उसे इसलिए महत्व देते हैं कि साहित्य में वह मनुष्य को दृढ़ चित्त बनाने का कार्य करता है। वे कहते हैं, मार्क्सवादी साहित्य कितने भी दुर्धर्ष जड़ विज्ञान के तत्ववाद पर आधारित क्यों न हो, वह मनुष्य को केवल नियति का गुलाम नहीं मानता। सिद्धांत रूप में वह चाहे जो भी स्वीकार क्यों न करता हो, साहित्य में वह मनुष्य को दृढ़ चित्त बनाने का कार्य करता है। मुझे इस श्रेणी के साहित्य में यह बात सबसे अच्छी लगती है। आचार्य द्विवेदी मार्क्सवादी तत्व ज्ञान से भी परिचित थे। वे उसकी व्याख्या चार सूत्रों के आधार पर करते थे। पहला, दुनिया या प्रकृति परस्पर सापेक्ष वस्तुओं से बनी है, कोई भी वस्तु अपने आप में निरपेक्ष नहीं। दूसरा, कुछ भी स्थिर नहीं है, प्रत्येक वस्तु गतिशील है, या तो वह विकासोन्मुख है या पतनोन्मुख, पर है गतिशील। चौथा, वस्तुओं का विकास आसानी से नहीं हो जाता, थोड़ी देर तक वह जरूर आसानी से ही चलता रहता है कि एक ऐसे स्थल पर पहुंचता है जब एक इकाएक तेजी से बिलट जाता है। पानी में गर्मी का संचार करते रहिए, निश्चित है कि थोड़ी देर तक कुछ परिवर्तन नहीं दिखेगा, एकाएक खास सीमा तक आने पर पानी खौलने लगेगा, उसमें उथल पुथल मच जाएगी और वह पुष्प वाष्प बनकर उड़ने लगेगा। पतनोन्मुख पानी और विकासोन्मुख वाष्प की यह सारी कहानी अत्यंत जटिल मानव समाज में भी इसी प्रकार दिखाई देती है। चौथा, प्रत्येक वस्तु में दो तत्व होते हैं, विकासोन्मुख और ह्रासोन्मुख। जो विकसित हो रहा है उसे दूसरा तत्व बाधा देता है, अभिभूत करने की चेष्टा करता है। जब विकासशील तत्व काफी सफल हो जाता है तो द्वंद्व तीव्रतम हो उठता है और फिर धीरे धीरे बाधा देने वाला या प्राप्तिकर्ता तत्व ठप्प हो जाता है। ये चार सूत्र प्रकृति के कण कण में लागू है। यह भी विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि आचार्य द्विवेदी इस चिंतन को प्राचीन भारतीय चिंतन का विरोधी नहीं मानते। वे कहते हैं, ऊपर मैंने जो कुछ लिखा है वह न तो हमारी प्राचीन काव्य परंपरा के स्वाभाविक विकास का परिपंथी है और न आधुनिक सहृदय के मानस संस्कारों का प्रतिगामी। आचार्य द्विवेदी अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर यह प्रतिपादित करते हैं कि ज्ञान का एक स्थिर या शाश्वत रूप है, जो वर्ग स्वार्थ के परे है। प्रत्येक युग में ज्ञान की साधना एक खास वर्ग या श्रेणी ने की है। समय के साथ समाज का वह ज्ञान आज मानव मात्र की संपत्ति बन गया है। वे शुल्ब सूत्रों के रचयिता ब्राह्मण पुरोहितों का हवाला देते हुए कहते हैं, शुल्ब सूत्रों के जिन ब्राह्मण पुरोहितों ने प्रथम रेखा गणित के विकास के विश्वव्यापक नियमों का आविष्कार किया था, वे मिट गए, पर जो ज्ञान वे दे गए वह सारे जगत की अपनी चीज है। आचार्य द्विवेदी का मत है कि जिस प्रकार ज्ञान का एक स्थिर या शाश्वत रूप है जो वर्ग स्वार्थ से परे है, उसी प्रकार काव्य सौंदर्य का भी है। वे कहते हैं, ज्ञान का जिस प्रकार एक स्थिर या शाश्वत रूप है जो वर्ग स्वार्थ से परे है, उसी प्रकार काव्य सौंदर्य का भी है। उसको ब्रह्मानंद सहोदर कहकर समझने की चेष्टा किए बिना ही मजाक उड़ा देना आसान है, पर उससे मिलते जुलते शब्द का व्यवहार किए बिना उसे समझाया नहीं जा सकता। आचार्य द्विवेदी यह मानते हैं कि अभिनव गुप्त का सिद्धांत मनोविज्ञान सम्मत है और सहानुभूति के सर्वोत्तम मार्ग का निर्देशक भी। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद काव्यास्वादन के इस नियम को स्वीकार नहीं कर सकता, किंतु उनका विश्वास है कि यदि कोई द्वंद्वात्मक भौतिकवादी साधारण राजनीतिक प्रचारक न होकर गंभीर तत्व चिंतक होगा तो मानेगा कि ये विचार चाहे जिस वर्ग या श्रेणी के ज्ञान साधक द्वारा प्रतिपादित हों, निश्चय ही काव्य चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। वे कहते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद काव्यास्वादन के इस नियम को स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु भौतिकवादियों की भी कई श्रेणियां हैं। यदि वह साधारण राजनीतिक प्रचारक होगा तो अभिनवगुप्त या आनंदवर्धन को किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि मानकर उनकी नियति पर ही आलोचना की कैंची चला देगा, पर यदि वह गंभीर तत्व चिंतक होगा तो मानेगा कि वे विचार चाहे जिस क्लास की उपज हों, ज्ञान धारा को आगे बढ़ाने में सहायक हैं। वह इन विचारों को तदर्श तत्ववादी की भांति विश्लेषण करके और विचार करके दूर नहीं फेंक देगा, बल्कि अपने अनुध्यात भविष्य के निर्माण में इनसे किसी प्रकार सहायता ली जा सकती है, यही सोचेगा। ऊपर के समस्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि आचार्य द्विवेदी मार्क्सवाद के उस रूप से सहमत हैं जो मनुष्य को नियति का गुलाम नहीं मानता और दृढ़तापूर्वक जीवन के बेहतर बनाने की प्रेरणा और शक्ति देता है, किंतु उस रूप को वे स्वीकार नहीं करते जो ज्ञान साधना और काव्य चिंतन की श्रेणी निरपेक्ष स्थिर और शाश्वत स्वरूप को वर्ग विशेष विचारधारा मानकर उसके महत्व को अस्वीकार कर देता है। आचार्य द्विवेदी आधुनिक मनोविश्लेषण शास्त्र की उपलब्धियों और साहित्य पर पढ़ने वाले उसके प्रभाव से परिचित हैं। वे इन उपलब्धियों को अधिक महत्व नहीं देते, वे यह तो मानते हैं कि शास्त्र पठनीय है और इससे अपने ही मन के भीतर प्रवाहित अनेक अज्ञात धाराओं का परिचय मिलता है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में इसके प्रभाव को वे अस्वास्थ्यकर और घातक मानते हैं। वे कहते हैं, इन विचारों का बड़ा घातक असर हमारे साहित्य पर हो रहा है। जिसे देखो वही कुछ मनोविश्लेषण का प्रयोग कर रहा है। कुछ प्रसुप्त वासना, कुछ लिबिडो, कुछ अवदमित कामना किस रूप में चेतन दिमाग में रूप परिग्रह कर रही है, यह बताने के उद्देश्य से जो साहित्य लिखा जाएगा उसमें वह चरित्रगत दृढ़ता आ ही नहीं सकती जो आज के संकट काल में हमें धीर और कर्मठ बना सके। यदि मनुष्य कुछ पूर्ववर्ती अज्ञात वासनाओं का ही मूर्त रूप है, यदि अनजान में बधी हुई हीनता की गांठ ही हमारे चरित्र का निर्माण कर रही है, तो फिर दृढ़ चिंतन और आत्मनिर्माण का स्थान कहाँ है। यहाँ भी हम देखते हैं कि द्विवेदी जी मनोविश्लेषण के सत्य को इसलिए अस्वीकार कर देते हैं कि वह मनुष्य को उच्चतर मानव मूल्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा नहीं देता और उसके मनोबल को कमजोर करता है। आचार्य द्विवेदी ने अनेक अवसरों पर मानव धर्म की चर्चा की है। मानव धर्म की अवधारणा की मूल प्रेरणा संभवतः उन्हें विश्वकवि रविंद्र से मिली थी। विश्वकवि रविंद्र ने मानव धर्म नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। अपनी पुस्तक में प्रतिपादित मानव धर्म का निचोड़ प्रस्तुत करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि दिव्य लोकोत्तर सत्ता को चाहे जो नाम दिया जाए, हमारे धर्म साधना के इतिहास में वह मनुष्य के रूप में ही उच्चतम स्थान पा सकी है। मनुष्य के रूप में ही उसने पाप और पुण्य की अवधारणाओं को चरितार्थ किया है और मनुष्य की प्रकृति से सामंजस्य रखने वाली पूर्णता की सभी अवधारणाओं को नित्यता प्रदान की है। कहना न होगा कि आचार्य द्विवेदी के पूरे चिंतन पर इस अवधारणा का प्रभाव है। वे तो यहाँ तक कह जाते हैं कि मध्ययुग में जिस बात को अध्यात्म कहा करते थे, वही वस्तुतः इस युग का मनुष्यत्व है। वे मनुष्य मात्र को एक मानते हैं और इसीलिए एक मानव धर्म की परिकल्पना करते हैं। उनका निश्चित मत है कि इसी लोक में इसी मर्त्यकाया और के भीतर समूची मनुष्य जाति को नाना प्रकार के से अभावों से मुक्त करके सुखी और सुसंस्कृत बनाना है। वे मूल्य जिसकी चरितार्थता से इस लक्ष्य की पूर्ति हो सके, मानव धर्म के विधायक माने जाएंगे। जो मानवतावाद मनुष्यों में श्रेणी भेद करता है, उसे द्विवेदी जी विकृत चिंतन का परिणाम मानते हैं। वे कहते हैं, मानवतावाद ठीक है, पर मुक्ति किसकी? क्या व्यक्ति मानव की? नहीं, सामाजिक मानवतावाद की उत्तम समाधान है। मनुष्य को, व्यक्ति मनुष्य को नहीं बल्कि समष्टि मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से मुक्त करना होगा। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। समष्टि मानव की अवधारणा वस्तुतः रविन्द्रनाथ टैगोर की है। द्विवेदी जी ने रविन्द्र के दार्शनिक विचारों की व्याख्या करते हुए कहा है, रविन्द्रनाथ एक समष्टि मानव में विश्वास रखते थे। यह समष्टि मानव सब मनुष्यों का आश्रय है। सबको मिलाकर विराजमान होने के कारण ही वह एकमेव द्वितीयम है। इस समष्टि मानव को हम अपनी भावनाओं और कार्यों के द्वारा अनुभव करते हैं या अनुभवगम्य बनाते हैं। ऊपर ऊपर से व्यक्ति मानव अलग अलग दिखते हैं। वैज्ञानिक बताता है कि इसे हम ठोस पिंड समझते हैं और छोटे छोटे असंख्य परमाणुओं से बनता है। यह परमाणु एक दूसरे से सटे नहीं, जिनमें व्यवधान है, फिर भी हमें पूरा पिंड एक और अभिन्न दिखाई देता है। इसी प्रकार मनुष्य की इकाइयों के व्यवधान और अंतर के होते हुए भी समष्टि मानव एक और अभेद्य है। समष्टि मानव व्यक्तियों से परे है, परंतु वह विराट मानव ही है। सत्य वही है जिसे वह विराट मानव चित्र धारण करता है। मानव निरपेक्ष कोई सत्य हो भी तो उसे हम जान नहीं सकते। इस संदर्भ में द्विवेदी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर और विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के बीच 14 जुलाई 1930 ईस्वी को हुई वार्ता का भी हवाला दिया है। आइंस्टीन का मत था कि सत्य मानव निरपेक्ष एवं स्वतः सिद्ध है। टैगोर का मत था कि मानव निरपेक्ष कोई सत्य हो ही नहीं सकता। विज्ञान द्वारा उपलब्ध सत्य भी मानवीय बौद्धिक उपकरणों से ही उपलब्ध होता है। यहाँ इस चर्चा को विस्तार देना अप्रासंगिक होगा। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आचार्य द्विवेदी का मानव धर्म तथा समष्टि मानव की अवधारणाओं पर रविन्द्रनाथ टैगोर का गहरा प्रभाव है। आचार्य द्विवेदी ने सत्य की व्याख्या इसी मनुष्य सत्य को केंद्र में रखकर की है। उन्होंने साफ साफ घोषित किया है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। उन्होंने बार बार दोहराया है कि मनुष्य की जो सबसे सूक्ष्म और सहनीय साधना है, उसी का प्रकाश साहित्य है। मनुष्य ने बड़ी साधना के बाद अपने को पशु सुलभ दुर्बलताओं से मुक्त करके विवेक, औदार्य, संयम, पर दुख, कातरता जैसे गुणों को उपलब्ध किया है। इन्हीं गुणों के कारण वह दूसरों से तादात्म्य स्थापित करता है। तादात्म्य की चरण परिणति एकत्व की अनुभूति में होती है। आचार्य द्विवेदी की मान्यता है, मनुष्य जितना ही अधिक मनुष्य होता है, उतना ही अधिक वह दूसरों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर सकता है, और इसको अंतिम तर्क संगत परिणाम तक ले जाया जाए तो वह कहते हैं कि एकत्व की अनुभूति ही मनुष्य की परम मनुष्यता है। मनुष्यता की प्रतिष्ठा से साहित्य श्रेष्ठ, मूल्यवान और सुंदर होता है। जहाँ से स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से सौंदर्य प्रारंभ होता है। द्विवेदी जी के शब्दों में, प्रयोजन की अतीत पदार्थ का ही नाम सौंदर्य है, प्रेम है, भक्ति है, मनुष्यता है। जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है, मनुष्यता प्रारंभ होती है। साहित्य का मर्म आचार्य द्विवेदी का सुविचारित निबंध है। इसका अंत करते हुए उन्होंने कहा है, मनुष्य रूपी पुरुष ही अर्थात पशु सुलभ धरातल से ऊपर उठा हुआ मनुष्यत्व धर्मी जीव ही सृष्टि की सबसे बड़ी साधना है। उससे बड़ा कुछ भी नहीं। पुरुषपान्न परम किंचितम सा काष्ठा सा परागति। इस वाक्य को आचार्य द्विवेदी की पूरे चिंतन का केंद्र बिंदु माना जा सकता है। उन्होंने अपने पूरे रचना विस्तार में इसी सत्य को प्रतिष्ठित किया है। कबीर उन्हें इसीलिए प्रिय है कि उन्होंने सारे भेद प्रभेद से ऊपर उठकर मनुष्यत्व की प्रतिष्ठा पर बल दिया है। सूरदास को वे इसलिए महत्व देते हैं कि उन्होंने उस राग चेतना के अत्यंत उत्कृष्ट स्वरूप को अभिव्यक्ति दी है जो मनुष्य मात्र की एकता का विधायक है। कालिदास उन्हें इसलिए आकर्षित करते हैं कि उनकी अनुपम नाट्यकृति अभिज्ञान शाकुंतलम मनुष्य और प्रकृति के साथ एक सूत्रता का विधान करती है और विश्वव्यापी भाव चेतना के साथ व्यक्ति की भाव चेतना का तादात्म्य स्थापित करती है। बाणभट्ट की अमर काया में वे इसलिए प्रवेश करते हैं कि कादंबरी के उस दीप्त प्रेम का साक्षात्कार कर सकें जो मानवता के सारे स्तर भेदों को मिटाकर मनुष्य मात्र की एकता का विधान करता है। इसी प्रकार चारु चंद्रलेख में चंद्रलेखा, पुनर्नवा में चंदा और आनंददास का पोथा में शुभा का सहज प्रेम सारे जड़त्व को मिटाकर समाज के स्तर भेदों को समाप्त करने वाला है। आचार्य द्विवेदी ने अमर नारी पात्रों की सृष्टि करके सृष्टि व्यापी राग चेतना को झंकृत करके समाज के जड़ बंधनों को काटने का सहज मार्ग प्रशस्त किया है। तुलसी उन्हें इसीलिए अपने अति निकट लगते हैं कि उन्होंने उन मानव मूल्यों की चरितार्थता प्रदान की है जिन्हें विकसित करके मनुष्य के मांगलिक विकास को संभव बनाया जा सकता है। छोटे छोटे तात्कालिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए गढ़े गए आरोपित मूल्यों की कसौटी पर उन्हें नहीं परखा जा सकता। आलोचना दृष्टि। मनुष्य को साहित्य के केंद्र में प्रतिष्ठित करने के कारण आचार्य द्विवेदी आलोचना के समग्र और संतुलित दृष्टि के निर्माण पर बल देते हैं। उनके अनुसार भावावेग यश या मोहवश या पक्षपातवश जब हम किसी जीवन के किसी एक पक्ष पर बल देने लगते हैं तो आंशिक सत्य को लेकर चलने वाली एकांगी दृष्टि का विकास होता है। मूल्यांकन की विविध पद्धतियां इसी प्रकार की एकांत निष्ठा का परिणाम है। आवश्यकता संतुलित दृष्टि के निर्माण की है। उनकी यह संतुलित दृष्टि मानव कल्याण के व्यापक उद्देश्य को सामने रखकर साहित्य के मूल्यांकन में प्रवृत्त होती है। प्रगतिवादी जीवन दृष्टि को वे इसलिए महत्व देते हैं कि वह मनुष्य जीवन को कल्याण मार्ग की ओर ले जाने के जीवन दर्शन से अनुप्राणित है। वे कहते हैं, साहित्य को महान बनाने के मूल में साहित्यकार का महान संकल्प होता है। वह संकल्प इस विचार पद्धति के साथ है। मनुष्य के कल्याण का संकल्प अपने देश की आध्यात्मिक परंपरा में ही निहित है। इसीलिए द्विवेदी जी की दृष्टि में व्यापक उद्देश्य के आधार पर देखा जाए तो भारतीय अध्यात्म दृष्टि मार्क्स द्वारा प्रचारित तत्व दर्शन के विरुद्ध नहीं है। द्विवेदी जी आलोचना की संतुलित और समग्र दृष्टि विकसित करने के लिए प्राचीन आलोचना पद्धतियों को स्वीकारने पर बल देते हैं। वे कहते हैं, मुझे यह समझ में नहीं आता कि आधुनिक समालोचना पद्धति क्यों नहीं पुराने अनुभवों से अपने को समृद्ध कर सकती। नवीन परिस्थितियों के अनुसार अपने पुराने अनुभवों का प्रयोग सर्वत्र हितकर होगा, जीवन में भी और साहित्य में भी। दृष्टि की विराटता और समग्रता के कारण ही द्विवेदी जी नीति सौंदर्य, मंगल सत्य, शास्त्रीयता, स्वच्छंदता, प्राचीनता, नवीनता, रस उक्ति वक्रता, भौतिकता, आध्यात्मिकता आदि सभी में विरोध न देखते हुए भी सभी को यथोचित महत्व देते हैं। वस्तुतः द्विवेदी जी की समीक्षा दृष्टि को समझने के लिए उनके द्वारा किए गए कालिदास के मूल्यांकन पर ध्यान देना होगा। कालिदास के महत्व को स्वीकार करते हुए भी कहते हैं, सुकुमारता के साथ सुशीलता का, मानसिक मृदुता के साथ चारित्रिक दृढ़ता का, अपार वैभव के साथ विपुल वैराग्य का, सौंदर्य के साथ धर्म का, ऐसा मणिकांचन योग संसार के साहित्य में विरल है। वस्तुतः आलोचक द्विवेदी इसी विरल विशिष्ट दृष्टि को महत्व देते हैं। जहाँ नैतिकता रसमय बना दी गई हो, बुद्धि सौंदर्य भाव से उत्प्रोत हो, मन द्रवणशील हो, किंतु इसमें दुर्बलता का चिन्ह भी न हो, मृदुता सरसता का आधार लेकर मूर्त हुई हो, रूप रस शब्द प्राण स्पर्श स्वाद सब कुछ कल्पना धर्मी होकर अपार्थिव सुषमा से मंडित हो गया हो, सौंदर्य की उसी पावन भूमि पर प्रतिष्ठित होकर संपूर्ण सौंदर्य को मंगल में पर्यवसित करने की अखंड आस्था लेकर द्विवेदी जी ने समीक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया था। वे सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना को साहित्य मानते हैं। मूल्यांकन। आचार्य द्विवेदी का आलोचक व्यक्तित्व किसी पूर्व निर्दिष्ट समीक्षा पद्धति के दायरे में नहीं रखा जा सकता। वे आचार्य थे, किंतु उन्होंने कभी भी आचार्यों द्वारा प्रतिपादित काव्य सिद्धांतों को साहित्य का शासक या नियंत्रक नहीं माना। अधिक से अधिक उन्हें साहित्य के सहचर के रूप में स्वीकार किया। वे एक शोधकर्ता थे, किंतु उन्होंने इतिहास के जड़ तत्वों का अंबार नहीं खड़ा किया। अतीत के सार्थक और प्राणवान तत्वों को वर्तमान से जोड़कर उन्होंने उनमें प्राण शक्ति का संचार कर दिया। द्विवेदी जी ने जो कुछ लिखा है वह सजीव है, प्राणवान है, शक्तिशाली, प्रेरक और महिमामय है। जब तक इस विशाल विश्व में मनुष्य रहेगा, वह अपनी सत्ता को प्रतिष्ठित और विकसित करने के लिए संघर्ष करता रहेगा। यह संघर्ष उसकी चेतना को गति देगा। मनुष्य की यही चेतना वाक और अर्थ के माध्यम से स्फुटित होगी और साहित्य दृष्टि निश्चित रूप से मनुष्य सत्य को प्रतिष्ठित करने में अपनी सार्थकता का अनुभव करती रहेगी। द्विवेदी जी की यही स्थापना है। यह मनुष्य सत्य उसकी जय यात्रा के क्रम में लब्ध सभी प्राणवान मूल्यों, नीति, धर्म, सौंदर्य, शील, मृदुता, दृढ़ता, राग विराग की समष्टि होगा। इसलिए साहित्य में सभी मूल्य मूर्त होकर जीवन की पूर्णता और अखंडता का बोध कराते रहेंगे। इसलिए मनुष्य सत्य का मूल्यांकन करने के लिए समग्र और संतुलित दृष्टि ही प्रासंगिक मानी जाएगी। द्विवेदी जी की यही स्थापना है। द्विवेदी जी को न तो किसी विशेष पद्धति विशेष के दायरे में सीमित किया जा सकता है, न परंपरा विशेष से जोड़ा जा सकता है। समष्टि मानव कल्याण की कामना देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करके ही अपना नैरंतर्य प्रमाणित कर सकेगी। द्विवेदी जी इसी नैरंतर्य के प्रतीक हैं।